डॉक्टर कुंवर बेचैन जी नमस्कार, SBS रेडियो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
नमस्कार, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए।
कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है, तो आज के साहित्यिक परिवेश में ये कितना हो पा रहा है, आपसे ये जानना चाहूंगी।
ये बहुत पुरानी कहावत है कि साहित्य समाज का दर्पण है
जी।
मैं इसको दो रूपों में देखता हूँ। दर्पण जो शीशा है जो हम उसके सामने खड़े होते हैं, तो दर्पण का काम होता है हम जैसे हैं वैसे दिखाना
जी,
यानी यथार्थ चित्रण जो है वो। और लेकिन दर्पण भीतर से ये कह रहा होता है, माना उसकी आवाज नहीं होती है, लेकिन हम सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। वो अगर हमारे चेहरे पर कोई धब्बा है, चेहरे पर कोई दाग धब्बा रह गया है, हमारे हमारा रूप में कोई कमी है, तो निश्चित रूप से दर्पण ये अंदर से बता रहा होता है कि भैया रखे ठीक कर लो
जी,
काजल ज्यादा फैल गया तो एक काजल ठीक कर लो। तो दर्पण के दोनों काम होते हैं। एक तो दर्पण का काम होता है यथार्थ वर्णन करना, जैसे हमें वैसे दिखाना।
जी,
साहित्य समाज का दर्पण है, इसका अर्थ ये हुआ कि साहित्य में जो समाज दशाएं हैं, समाज का जो परिवेश है, समाज में जो कुछ हो रहा है वो एज इट इज भी दिखाया जाए। लेकिन यही इसकी इतिश्री नहीं हो जाती, यही इसका क्लाइमेक्स नहीं है, बल्कि आगे चल करके साहित्यकार का ये भी काम है कि साहित्य के माध्यम से वो किस तरह से समाज ठीक हो सकता है, जो उसकी विद्युतताएं हैं, जो उसकी विसंगतियां हैं, जो उनके अंदर खामियां हैं, बुराइयां हैं, उनको कैसे दूर किया जाए, इस बात को भी साहित्य बताए।
जी,
साहित्य समाज का दर्पण है, इस बात को कह पाएंगे
जी। और आज के परिवेश में ये कितना सही बैठ रहा है, इसके बारे में भी आपसे आपकी राय लेना चाहूंगी।
हाँ, इधर जो है तमाम जो साहित्य लिखे जा रहे हैं
जी,
किसी भी धर्म में, चाहे उपन्यास हो या कहानी हो या कविता हो, गजल हो, गीत हो, जो भी हो,
जी
इस सब के अंदर हम देखते हैं कि अगर व्यक्ति जो कवि है अपनी व्यक्तिगत जिंदगी की बात नहीं कर रहा है तो वो इस प्रकार की बात होती है, सामाजिक जीवन जिंदगी की बात होती है, सामाजिक परिवेश जो हमारा है उसकी जो दशाएं हैं उनको अपने व्यक्तिगत जीवन के साथ में जोड़ देता है वो। और वैसे स्वतः रूप से वो बाहर की जो परिस्थितियां हैं, बाहर का जो परिवेश है, सामाजिक बुराइयां हैं, उन सामाजिक बुराइयों के बारे में भी अटैक करता है। वो वैयक्तिक ना होकर के अधिक सामाजिक है, सामाजिक जन है, उसके अंदर हमारी अर्थ जो हमारी आर्थिक परिस्थितियां हैं, जो हमारी धार्मिक परिस्थितियां हैं, जो धार्मिक विद्रूपता है या आर्थिक विद्रूपता है, उन पर भी कटाक्ष करता है, जन के माध्यम से बात करता है। इसलिए हमारा जो जन का स्वर है, चाहे वो गीत हो या गजल हो, कुछ भी हो, उसमें एक व्यंग्यात्मक छवि इस संस्थान में आ गया है। लेकिन खास बात यह है कि कविता का काम सीधे सीधे बात करना नहीं होता, तो वो प्रतीकात्मक ढंग से बात करता है, वो सिंबल्स में, संकेतों में बात करता है। इसलिए कविता संकेतों की भाषा होने के कारण से हम समाज की जो विद्रूपताएं हैं, समाज की जो खराबियां हैं, उनको भी बता रहे होते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस समय का जो साहित्य है वो पूरी तरह से इस प्रकार का साहित्य है जो सामाजिक विद्रूपताओं को, सामाजिक बुराइयों को बता रहा है।
जी, आपने कविताओं की बात की और आप तो कविता से ही जुड़े हुए हैं। कहते हैं कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, तो क्या आपके संदर्भ में भी यही बात सत्य रहेगी?
हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये ऐसा है कि जो अभाव है वही भावों को जन्म देते हैं। मेरे संदर्भ में यही बात है कि मैं जब दो महीने का था तब मेरे पिताजी नहीं रहे। जब मैं 6 साल का था तो मेरी माता जी का देहांत हो गया। जब मैं 2 साल का था तो मैं अपनी बहन बहनों के घर आ गया था।
अच्छा।
लेकिन दुर्भाग्य से मैं जब 9 साल का हुआ तो मेरी बहन की मृत्यु भी हो गई। तो मैं केवल जीजाजी और मैं गांव के थे, वो जो मैं दो ही लोग रहे उसमें, और दोनों
अच्छा।
लोग बनकर के 9 साल की उम्र से शादी कुंजी मेरे हाथ में आ गई। तो ये जो परिस्थितियां थी, माँ का अभाव, पिता का अभाव, बहन का भी अभाव, जो बहन मेरे संरक्षिका बनकर रही उनका ही अभाव, इस तरह से सारे जो अभाव रहे उन अभावों ने मुझे भीतर से तोड़ दिया। माना कि हम जो बचपन होता है, बड़ी खुशी की बात ये है कि बच्चे को नहीं पता होता मैं संघर्ष कर रहा हूँ, बाद में बड़े होकर पता चलता है कि संघर्ष में संघर्ष किया। बच्चे को नहीं मालूम होता, उसमें भोला होता है, उसे संघर्ष का साथ में नहीं पता होती। तो मैंने उस समय जो संघर्ष किया, लेकिन अभाव तो फिर भी रह गए साथ में। इसलिए मेरे कविता के अंदर भी जो है वो दुख की बात ही ज्यादा आई। मुझसे एक बार दूरदर्शन में पूछा गया था इंटरव्यू में कि आप ये बताइए कि आपके गुरु कौन कौन रहे। तो मैंने गुरुओं के नाम बताए जो शुरू से रहे, लेकिन मैंने एक बात ये भी कही कि मेरा सबसे बड़ा गुरु यदि कोई रहा तो वो रहा दुख। दुख जितना समझा कर जाता है, दुख जितना बता कर जाता है, दुख जितना अनुभव देकर जाता है, उसमें दुनिया में कोई नहीं दे सकता।
जी, आपको अपनी पहली कविता याद है?
पूरी तरह से याद नहीं है, लेकिन 2-3 पंक्तियां याद हैं। जब मैं नवीन कक्षाएं पढ़ा करता था तो मेरी उम्र 13 वर्ष की थी। उस समय मेरी क्लास टीचर जो थे उन्होंने पॉलिसी मैगजीन के लिए कविताएं मंगवाई थी। तो मैं भी अगले दिन एक कविता लिखकर चले गया था, जिस पर उन्हें शक हुआ, उन्हें लगा कि ये कविता मेरे द्वारा लिखी थी, नहीं है, मैं कहीं से उड़ा लाया हूँ।
अच्छा।
तो कविता यूँ थी कि सुंदर फूलों की सुंदर आशा हो सके अगर तुम मुझको ये बताओ, तुम में ये मादक गंध कहाँ से आई, छूती है तुमको कैसे ये परवाई, हो सके मुझे तो इतना भी समझाओ, सुंदर फूलों की सुंदर आशा हो। ऐसे करके फिर की पंक्तियां थी जो मैं लिखी
बात
गया
है
था।
जी। और अभी आप नवीं कक्षा में पढ़ते थे
हाँ, नवीं कक्षा में पढ़ता था, मेरी उम्र 30 वर्ष।
और तब आप इतनी अच्छी कविता लिख पाए थे
हाँ, जैसे भी हो,
जी।
फिलहाल मेरे जो क्लास टीचर थे वो खुद अच्छे, बहुत कवि थे, बहुत अच्छे कवि थे, गीतकार थे,
जी
पंडित महेश्वर भाई शर्मा जी।
जी
वो उन्हें शक हुआ कि ये कविता मेरे द्वारा लिखी गई है, तो उन्होंने मेरी परीक्षा लेने के लिए मुझे क्लास से बाहर कर दिया और कहा कि तुम तुलसीदास से कविता लेकर लिख कर लाओ, तो मैं समझूंगा तुमने ये कविता लिखी। मैं
अच्छा
चला गया और मैं
जी
कोशिश की कि तुलसीदास से कविता लिख लूँ, लेकिन छोटा बालक था उस समय और मैं ऐसा नहीं कर सकता था। जो मेरे भीतर से आया वो तो मैंने लिख दिया, जो बाहर से किसी का ऑर्डर पर कोई चीज होती है वो मैं नहीं कर पाया। मेरे ऊपर कक्षा में आया तो मैंने कहा था वो कविता तो मेरी ही लिखी हुई, ईमानदारी की बात है, लेकिन उसकी बात पर कविता मैं नहीं लिख पा रहा हूँ। तब उन्होंने मुझे देखा ध्यान से और बहुत नमक निगाहों से देखा और उन्होंने विश्वास से सोचा कि नहीं, जाओ दोबारा जाओ, तुम लिख लाओगे।
अच्छा।
उन्होंने रजिस्टर में से कागज निकाल के दे दिया, मैं फील्ड में जाकर बैठ गया और फिर मैंने कोशिश की कविता है लिखूँ। तो फिर मैंने तुलसी दास का कविता लिख के ले आया। उन्होंने अगले दिन तुलसी जयंती का फंक्शन था, उसमें पूरे स्कूल के सामने मुझे कविता सुनाने के लिए आदेश दिया, मैंने वो सुनाई और प्रथम श्रेणी मतलब प्रथम आयु कविता मुझे पुरस्कार भी मिला।
क्या बात है। यानी वो जो आपने उस कच्ची उम्र में शुरू किया वो आज तक चल ही रहा है, उसमें तो कोई विराम नहीं आया और ना ही आपकी जो रचना शैली है उसमें कोई विराम आया। आपने फिल्मों के लिए भी गाने लिखे
जी,
जी।
लेकिन ऐसा हुआ कि मेरे जो मंचों पर मैं सुनाता था, जो जो गीत ऐसे थे जो फिल्म में आने लायक थे, तो
जी
जो फिल्म के प्रोड्यूसर थे उन्होंने कहा कि हम आपका ये वाला गाना अपनी फिल्म में ले लें, ये वाला गीत ले लें, तो मैंने ले लीजिए। तो जैसे काफी दिनों पहले एक फिल्म बनी थी कोक,
जी
कोक नाम की फिल्म बनी थी, उसमें मेरा बहुत प्रसिद्ध गीत था जो मंचों पर सुनाया करता था, जितनी दूर नयन से सपना, जितनी दूर अधर से हंसना, बिछुए जितनी दूर तुम्हारे पाँव से, उतनी दूर पिया तुम मेरे गाँव से। इसमें 1961 में मैंने लिखा था जबकि मैं बीकॉम का छात्र था, लेकिन ये मंचों पर बहुत प्रसिद्ध हुआ और सारे कवियों कवि सम्मेलन मुझे इस गीत के कारण से बुलाया जाता था। तो ये गीत कोक नाम की फिल्म में लिया गया, रवीन जैन जी ने संगीत दिया और हेमलता जी ने इसको गाया।
जी
तो इस तरह फिल्म में प्रवेश मुझे इस गीत के माध्यम से हुआ। अभी एक फिल्म बन रही है जो ब्रजभाषा के क्षेत्र की है,
जी
उसमें मैंने 5 गीत लिखे हैं। और ऐसे ही एक सुनामी इश्क नाम से एक फिल्म रिलीज होने वाली है, वो पूरी हो चुकी है,
जी
उसमें भी मैंने गीत लिखे हैं। तो
जी
एक प्रकार से जो मेरे लिखे हुए गीत हैं वो और कुछ इधर की फिल्मों में मैंने नए गीत जो फिल्म के लिए नहीं
जी
गाते।
जी एक अलग विधा होती है वो भी। और अभी आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने हमारे लिए ये समय निकाला।
नहीं तो जी, ये तो मेरा सौभाग्य कि मैं भारत में सुना हूँ और आप ऑस्ट्रेलिया में हूँ। मैं सभी श्रोताओं का और आपके रेडियो का बहुत बहुत आभारी हूँ।